मार्गदर्शन।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम मार्गदर्शन के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम शिक्षा प्रशिक्षा में शिक्षकों की भूमिका व महत्व पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
शिक्षक व प्रशिक्षक समाज को गतिशील बनाने और उसे दिशा प्रदान करने वाले होते हैं। वे न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि सोच को रूप देते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनके आचरण छात्रों के लिए व्यवहारिक आदर्श होते हैं। इसी कारण इस्लामी शिक्षाओं में शिक्षक को पैगंबर इस्लाम का वारिस समझा जाता है और वो उच्च स्थान का स्वामी होता है।
एक बच्चा 7 साल से लेकर 17 साल तक शिक्षक व प्रशिक्षक की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करता है, यानी हर व्यक्ति कम आयु में अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा व प्रशिक्षा केंद्रों की निगरानी में होता है। तो शिक्षा प्रशिक्षा के केंद्र व ढांचे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई इन केंद्रों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो इन केंद्रों के महत्व के बारे में कहते हैं, अगर कोई देश भौतिक इज्जत और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करना चाहता है, राजनीतिक आधिपत्य और वैज्ञानिक प्रगति करना चाहता है, सांसारिक जीवन को आबाद करना चाहता है और हर अभिलाषा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो एक बुनियादी व आवश्यक कार्य की भूमिका के रूप में शिक्षा केंद्रों और उसके ढांचे पर ध्यान दे। क्यों? क्योंकि इन समस्त कार्यों के लिए मानवीय श्रम बल की आवश्यकता है। मानवीय श्रम बलों का निर्माण भी मुख्य रूप से शिक्षा व प्रशिक्षा के माध्यम से होता है। इस प्रकार से कि अगर शिक्षा प्रशिक्षा के हमारे केंद्र सही तरह से काम करें और समय का सही ढंग से उपयोग करें, तो वो इस बात का कारण बनेगा कि जिस युवा का निर्माण यहाँ होगा, बहुत कम संभावना रहेगी कि उसके जीवन की आगामी घटनाओं में बुनियादी परिवर्तन उत्पन्न हों। अगर युवा का अच्छी तरह से प्रशिक्षण हो, तो वो थोड़े से बदलाव के साथ जीवन को उसी रूप में जारी रखेगा। तो शिक्षा प्रशिक्षा का ढांचा है वो योग्य व उपयोगी व्यक्तियों के निर्माण का असली केंद्र है।
शिक्षा व प्रशिक्षा के ढांचे का महत्व इंसान के महत्वपूर्ण होने का कारण है। इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी उम्र का सबसे बेहतरीन समय वो शिक्षा केंद्र व स्कूलों में बिताता है। शिक्षा केंद्र बच्चों के अमानत घर हैं, जहां उन्हें शिक्षा व प्रशिक्षा दी जाती है, और ये भारी व मूल्यवान अमानत है। इस आधार पर शिक्षा व प्रशिक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी, जिसका मूल आधार शिक्षक होता है, ये है कि वो शिक्षकों व छात्रों के लिए बेहतरीन स्थिति उपलब्ध कराएं, ताकि उसमें अच्छी तरह से शिक्षा प्रशिक्षा दी जा सके। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता इस बारे में बल देकर कहते हैं, हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा व प्रशिक्षा केंद्रों से 13 साल के बाद बाहर निकलता है, वो नैतिक, वैचारिक और धार्मिक विशेषताओं से सुसज्जित हो। हम इस प्रकार का व्यक्ति चाहते हैं। नैतिक दृष्टि से इंसान को बहादुर, साहसी, अच्छे व्यवहार वाला, हितैषी, अच्छी सोच रखने वाला, आशा रखने वाला, ऊंचा मनोबल रखने वाला, फैसला करने में अच्छा और दूसरी उन समस्त नैतिक विशेषताओं से संपन्न होना चाहिए जिनको आप एक अच्छे इंसान के लिए सोच सकते हैं।
वैचारिक दृष्टि से उसमें रचनात्मकता पाई जाती हो, वो जिज्ञासु हो, सोच विचार करने वाला हो, उन बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करने वाला हो जो अज्ञात हैं। व्यवहार की दृष्टि से नियम व कानून का पालन करने और उसकी पहचान रखने वाला हो। हम इस प्रकार का इंसान चाहते हैं। क्या इस प्रकार के इंसान का प्रशिक्षण किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। ये बात सही है कि समस्त इंसान एक जैसे नहीं हैं। सही है, उनके जीन भिन्न हैं और उनका इंसानों के जन्म में विभिन्न प्रभाव है, और इनके कारण अलग अलग स्वभाव के इंसान पैदा होते हैं। परंतु कुल मिलाकर समस्त इंसान प्रभाव को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता एक शेर भी पढ़ते हैं, जिसका अनुवाद है, मैं एक सादी तख्ती हूँ। मैं हर चित्रकारी के लिए तैयार हूँ। देखता हूँ कि चित्रकार मुझ पर क्या चित्रकारी करते हैं।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के अनुसार शिक्षा व प्रशिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से एक उसका ढांचा है। वरिष्ठ नेता का मानना है कि ये अच्छा नहीं है कि ढांचे और अर्थ के दृष्टि से शिक्षा व प्रशिक्षा का ढांचा पूरी तरह से दूसरों की नकल पर हो। वरिष्ठ नेता के अनुसार शिक्षा प्रशिक्षा का अच्छा ढांचा वो है जो समाज की आवश्यकताओं और आस्थाओं के अनुसार हो। उदाहरण स्वरूप, वरिष्ठ नेता शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे की एक बड़ी कमी छात्रों को रट्टू तोता बनाना मानते हैं। उनका मानना है कि छात्रों को कुछ बातों को रट कर शिक्षकों के सामने पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षा व प्रशिक्षा के ढांचे को चाहिए कि वो छात्र की सोच को गतिशील बनाए। इसी प्रकार वरिष्ठ नेता का सुझाव है कि बच्चों की सोच को गतिशील बनाने के लिए उन्हें दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया जाना चाहिए। वरिष्ठ नेता इस संबंध में एक रोचक बिंदु की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, आज दुनिया के विकसित भौतिकवादी देशों में एक बुनियादी कार्य व महत्वपूर्ण विषय बच्चों को दर्शन शास्त्र का पढ़ाया जाना है। हमारे समाज में बहुत से लोग ये भी सोचते नहीं कि बच्चों के लिए भी दर्शन शास्त्र की जरूरत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दर्शन शास्त्र एक विचित्र चीज है और उस पर कुछ लोग बड़े होने पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र सोच को रूप देता है, समझने का तरीका सिखाता है। मस्तिष्क को सोच विचार करने और समझने का तरीका सिखाता है। ये कार्य शुरू से होना चाहिए। ढांचा महत्वपूर्ण है, यद्यपि बच्चों के दर्शन शास्त्र में अर्थ भी महत्वपूर्ण है, परंतु महत्वपूर्ण शैली यह है कि बच्चा बचपने से ही सोच विचार की आदत करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे में परिवर्तन का सुझाव देते हुए शिक्षा प्रशिक्षा से जुड़े अधिकारियों का आह्वान करते हैं कि ये परिवर्तन ऐसा हो जो दिखाई पड़े। वो शिक्षा प्रशिक्षा से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये देखो कि समाज को किस दक्षता और हुनर, कुल मिलाकर किस उपयोगी श्रम बल की आवश्यकता है और उसके आधार पर लक्ष्य बनाओ। वरिष्ठ नेता कहते हैं, देखो हम क्या चाहते हैं, जो शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों से शिक्षित होकर निकलना चाहते हैं वो क्या हों, पहले इसे हम तय करें, उसके बाद देखें कि इस प्रकार का इंसान, इस प्रकार का मर्द औरत और इस प्रकार का जवान बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण व बुनियादी कार्य और क्या ज़रूरी शिक्षा दी जाए ताकि इस इंसान का प्रशिक्षण किया जा सके। उस वक्त उपयोगी लोग बैठें और शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे को संकलित करें और ज़रूरी साहस के साथ काम करें और शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे को उसके अनुसार तैयार करें। ये वास्तविक और बुनियादी परिवर्तन होगा।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की एक सिफारिश ये है कि इस संबंध में युवा शिक्षकों का चयन किया जाना चाहिए। वो शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे का आह्वान करते हैं कि वो जवान शिक्षकों के चयन को प्राथमिकता दे और शिक्षा व प्रशिक्षा में उन जवान शिक्षकों की मूल चिंता इंसानों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता बल देकर कहते हैं कि शिक्षा प्रशिक्षा के ढांचे को चाहिए कि वो योग्यता व क्षमता का पता लगाए। छात्रों की योग्यताओं का पता लगाने का वरिष्ठ नेता के निकट बहुत महत्व है। वो इस संबंध में कहते हैं, शिक्षा प्रशिक्षा केंद्रों में वो काम किया जाना चाहिए कि दसियों लाख ईरानी नौजवानों व जवानों में से एक की भी योग्यता बेकार न होने पाए, यानी इस सीमा तक की हमारी शिक्षा हाई स्कूल तक की है, ये 12 साल तक पढ़ते हैं, जो भी पढ़ता है उसकी योग्यता बेकार न जाने पाए। उसके बाद संभव है कि कोई विश्वविद्यालय में प्रवेश ले ले, कोई तकनीकी विषय ले ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सब ठीक है, किंतु इस दौरान समस्त योग्यताओं को निखार जाना चाहिए।
इस समय इंटरनेट और कंप्यूटर गेम्स की दुनिया है। इस दुनिया व वातावरण ने हमारे बच्चों को घेर रखा है। इसने बच्चों और नौजवानों को सही तरह से सोचने से दूर कर रखा है। इस प्रकार की परिस्थिति में शिक्षा प्रशिक्षा विभाग की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता का मानना है कि शिक्षा प्रशिक्षा का वो ढांचा अच्छा है जो प्राचीन शैली को छोड़ दे और दिन प्रतिदिन छात्रों की शिक्षा प्रशिक्षा के नए नए मार्गों की खोज करे। रुकावटों को खत्म कर देना चाहिए और बच्चों की शिक्षा प्रशिक्षा के लिए बेहतरीन शैली अपनाई जानी चाहिए।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता के अनुसार अगर एक देश में शिक्षा प्रशिक्षा का ढांचा बेहतर हो जाए तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुंदरता, कला, हुनर और समाज में लोगों के एक दूसरे से विभिन्न संबंधों पर पड़ेगा और इन सबसे बढ़कर धर्म, दर्शन शास्त्र और व्यवहार का भी प्रभाव पड़ेगा।
वरिष्ठ नेता का जो ये उच्च दृष्टिकोण है, ऐसी बात नहीं है कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सोच विचार करके, दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाकर और सही रास्तों को अपनाकर शिक्षा प्रशिक्षा के बेहतरीन ढांचे को बनाया जा सकता है और उससे शिक्षा ग्रहण करके योग्य, उपयोगी व लाभदायक व्यक्ति बाहर आएंगे और समाज के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।